सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सवसाहूनं जय उदरसेननाहो जेन महाकम्मपयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोद्धरियो समप्यो फुफयन्तस। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। सातवीं पुस्तक में अभी हम 92 पृष्ठ पर आ गए। यहाँ संयम मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें जीव संयमी क्यों होता है ऐसा कहेंगे, तो एक एक संयम का अलग अलग वर्णन लेके उसकी बात पूछेंगे। तो पहले में पहले सामायिक और छेदोपस्थापना, ये जो संयम है वो कैसे होता है ऐसा पूछा गया था, किस कारण से होता है। अब उसका उत्तर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये 49 नंबर का जो सूत्र है उसको पहले पढ़ेंगे हम, फिर उसका अर्थ भी देखेंगे। उव समी आए खई आए खओ व समी आए लद्दीए, तीनों ही लिए भाव, औपशमिक शायिक और क्षायोपशमिक। तो कहते औपशमिक शायिक और क्षायोपशमिक लब्धि से जीव संयत व सामायिक छेदोपस्थान शुद्धि संयत होता है। एक तो पहले संयत ने सामान्य से बात की कि संयत क्यों होता है, जीवों को संयम क्यों है, तो या तो क्षौपशमिक भाव से है, भाव की बात है ना, लब्धि यानी जीव के परिणाम की बात की है, कर्म के क्षौपशम के कारण हो नहीं, कर्म का क्षौपशम उस समय पाया जाता है परंतु जीव के परिणामों से वो प्राप्त है। तो लब्धि जब कहते हैं वो जीव की पर्याय में लेना, उसको जीव का परिणाम है। तो औपशमिक भाव से भी हो सकता है, क्षौपशमिक भाव से भी और क्षायिक भाव से भी। पहले संयम का कथन करते हैं, संयम किसे कहना उसकी बात करते हैं, या वहां कौन से कर्मों की क्या अवस्था है उसको पहले बताएंगे। चारित्रावरण कर्म के, देखो चारित्र मोहनीय को ही यहां चारित्रावरण कहा है। चारित्रावरण कर्म के सर्वोपशम से उपशांत कषाय गुणस्थान में संयम होता है, इसलिए औपशमिक लब्धि से संयम की उत्पत्ति कही। तीन अलग अलग लब्धि बताई ना, एक औपशमिक लब्धि, तो चारित्र मोहनीय का पूर्णतः उपशम 11वें गुणस्थान में पाया जाता है, जिसको उपशांत कषाय उस गुणस्थान का नाम है। उपशांत कषाय ये 11वें गुणस्थान का नाम है। तो वहां क्या है, चारित्रावरण या चारित्र मोहनीय कर्म का सर्वोपशम पूर्ण रूप से उपशम है, तो वहां जो संयम होता है इसलिए वहां औपशमिक लब्धि से संयम की उत्पत्ति है ऐसा कहा। शंका, संयत के क्षायिक लब्धि कैसे होती है, तो उसका समाधान, चूंकि चारित्रावरण कर्म के क्षय से भी संयम की उत्पत्ति होती है, इससे क्षायिक लब्धि द्वारा जीव संयत होता है। जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है उसके तो चारित्रावरण चारित्र मुनि का क्षय हो जाता है, तो वहां भी क्षायिक लब्धि से संयत होता है ऐसा कहेंगे। फिर शंका, संयत के क्षायोपशमिक लब्धि कैसे होती है, या औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, या ये तो श्रेणी में बताया, तो क्षोपशम संयम कैसे हो सकता है, उसका समाधान, चारों संज्वलन कषायों और नौ कषायों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम की उत्पत्ति होती है। इसके तो स्पर्धा की जो देशघाती है, नव नौकशाय और संज्वलन, तो उसका उदय चल रहा है, देशघाती का उदय चल रहा है, इसलिए वहाँ क्षोभशम संयम, संयम की बात है, सम्यक्त की नहीं, संयम की, इसलिए संयत के क्षोभशमिक लब्धि पाई जाती है। हमने पहले भी क्षोभशमिक भाव जब गिनाए थे कितने हैं याद है क्या? 18 होते हैं, जरा गिनाएंगे थोड़े। अभी तक हमने बहुत सारे क्षोभशम भाव देखे भी है, इसमें ज्ञान के प्रकरण में कितने देखे क्षोभशम भाव? हाँ हाँ, कौन कौन से ज्ञान क्षोभशमिक ज्ञान है? हाँ, केवल ज्ञान छोड़कर कितने रह गए? हाँ, 7, 4 सुज्ञान और 3 अज्ञान, ऐसे सातों ही वो क्षोभशमिक है, बराबर। दर्शन में 3 है वो क्षोभशमिक है, बराबर। 7, 3, 10 तो इधर ही हो गए, 18 में से 10 हो गए। अब ये 5 दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, वो भी 5, 15 हो गए, अब 3 ही रह गए। हाँ, क्षोभशमिक सम्यक तो क्षोभशमिक चारित्र जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, और संयम असंयम उसको भी क्षोभशमिक भाव कहा। तो यहाँ संयत की बात चल रही है, जिसको सराग चारित्र भी कहते हैं, 6-7 गुणस्थान वाले के क्षोभशम चारित्र है। देखो, यह क्षोभशम लब्धि है वहां संयम संबंधी। फिर शंका, 4 संज्वलन और 9 कषायों के स्पर्धकों के उदय को क्षोभशम नाम क्यों दिया गया? तो उसका समाधान, आपका प्रश्न ऐसा है, जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित 7वें गुणस्थान में जाता है उसको भी संयम होता है, कौन सा संयम होगा? औपशमिक होगा कि क्षोभशमिक होगा? औपशमिक, औपशमिक तो सम्यक्त्व है वहां। उपशम तो उपशम किसका होगा? वहां पर दर्शन मोनी और अनंतानुबंधी का उपशम है, परंतु वहां भी जो प्रथम उपशम के साथ जो 7वें में जा रहा है उसके भी चारित्र या संयम कौन सा है? तो क्षयोपशमिक है। हाँ, 11वें में, अभी हमें पढ़ा ना, पहले ही बात पढ़ी। प्रश्न क्या पूछा? कि संज्वलन और नव नौकषाय के उदय से, उन स्पर्धकों के उदय से आप क्षोभशमी भाव कैसे घटित करते हो? तो उसका समाधान चल रहा है, सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर, अनंत गुणा और हीन यानी उसका अर्थ है अनंत वा भाग होकर। इसमें जो सर्वघाती प्रकार के जो स्पर्धक है वो अनंत वे भागहीन होकर और देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उदय तो देशघाती का ही चलेगा यहां पर। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणहीन पना, अनंत गुणाहीन यानी अनंत वे भाग हो जाना, परमाणु तो परमाणु ही है परंतु उसमें जो फल देने की जो शक्ति तीव्र थी वो घटती घटती अनंतवा भाग इतनी रह जाती है, तो उसको कहते हैं अनंत गुणाहीन हो जाना। तो अनंत गुणाहीन होकर देशघाती होना और उस रूप से उदय आना, तो अनंत गुणहीन पना ही उसको क्षय कहते, यहाँ क्षय कहलाता है। और उनका देशघाती स्पर्धकों के रूप से अवस्थान होना उपशम है, यानी वे जो सत्ता में पड़े हैं वो सर्वघाती रूप से नहीं है, देशघाती रूप से है। कौन से? संज्वलन में नौकषाय होते हैं ना, संज्वलन तो दोनों यानी सत्ता में तो पहले होते हैं सर्वघाती, वो तो देशघाती रूप से होकर उदय में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर ही उदय में आते हैं। क्योंकि सर्वघाती नहीं होगे तो पहले तो इसके साथ अनंतानुबंधी के साथ जब उसका उदय चलता है तो सर्वघाती रूप से चलता होगा ना। अब उन्हीं क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपशम कहलाता है और उसी क्षयोपशम से उत्पन्न संयम भी इसी कारण क्षयोपशमिक होता है। इसी प्रकार वहाँ तो संयम इन जनरल की बात की, सामान्य से बात की, संयतों की। अब संयतों में जो अलग अलग प्रकार है, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि वगैरह, उसकी बात अब करेंगे। तो इसी प्रकार जो हमने सामान्य संयम में देखा वैसा ही सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों के विषय में भी कहना चाहिए। ये सामायिक और शुद्धि संयत, ये जो छेदोपस्थापना जो है संयम, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन से गुणस्थान से? हाँ, छठे से नौवे तक, बराबर, छठे से नौवे तक होता है। अब शंका, सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों के क्षयोपशम लब्धि भले ही हो किंतु उनके औपशमिक और क्षायिक लब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से ऊपर इन संयतों का अभाव पाया जाता है, यानी नौवे तक ये संयम है, आगे नहीं है। और नीचे के अर्थात अपूर्वकरण और अनिकृत्तिकरण, इन दो क्षपक और उपशामक गुणस्थानों में, यानी उपशम श्रेणी वाला आठवां नौवां गुणस्थान और क्षपक श्रेणी वाला आठवां नौवां गुणस्थान, उनमें चारित्र मोहनीय की क्षपणा व उपशामना होती नहीं है, जिससे उक्त संयतों के क्षायिक और औपशमिक लब्धि संभव हो सके। क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, सूत्र में क्या कहा था, ये संयत भी और सामायिक छेदोपस्थापना भी किस कारण से होते हैं? तो या तो औपशमिक लब्धि से, या क्षायिक लब्धि से, या क्षौपशमिक लब्धि से। तो शंकाकार का कहना ऐसा है कि जो औपशमिक भाव है तो आठवें नौवें गुणस्थान में घटित नहीं होगा, वैसे क्षायिक, तो उसको क्यों कहते हो, अकेले क्षौपशमिक कहो। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि क्षपक और उपशामक संबंधी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में भी लोभ संज्वलन से अतिरिक्त अशेष चारित्र मोहनीय का क्षपण व उपशमन के देखे जाने से, क्या कहते हैं, लोभ संज्वलन जो है वो तो दसवें तक है, परंतु नीचे के जो गुणस्थान है वहाँ भी अशेष चारित्र मोहनीय का, यानी लोभ को छोड़कर अन्य जो चारित्र मोहनीय कर्म है उनकी उपशमना भी है वहाँ और क्षय भी है। हमने देखा था कि उपशम और क्षय का तो मेजॉरिटी सारा ही कार्य नौवे में ही होता है, इसलिए वहाँ क्षायिक और औपशमिक लब्धियों की उपलब्धि संभव है, अथवा क्षपक और उपशामक संबंधी अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर ऊपर सर्वत्र, अपूर्वकरण को भी ले लिया, क्षायिक और औपशामिक संयम लब्धियां है ही, क्योंकि यानी वहां पहले ही समय से वो औपशमिक लब्धि भी है और क्षायिक लब्धि भी है। क्यों? तो उक्त गुणस्थान के प्रारंभ होने के प्रथम समय से लेकर थोड़े थोड़े क्षपण और उपशामन रूप कार्य की निष्पत्ति देखी जाती है, यानी वहाँ जो उस संबंधी जो कोई कार्य है वहाँ पर अपूर्वकरण के पहले समय से शुरू होता है, स्थिति कांड घात वगैरह वगैरह बातें हमने देखी थी, वो वहीं से शुरू हो जाती है, इसलिए वहाँ भी थोड़ा थोड़ा क्षपण और उपशमन कहा उन्होंने। यदि प्रत्येक समय कार्य की निष्पत्ति न हो तो अंतिम समय में भी कार्य पूरा होता हुआ नहीं पाया जा सकता। हमने गैस पर, चूल्हे पर रखा पानी, तो कब उबला? तो हमने कहा 10 मिनट के बाद वो उबल रहा है, तो पहले ही समय से कुछ उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगा कि नहीं? वैसे यदि कोई कार्य संपन्न होता है उसके लिए कुछ समय काल लगा है तो वो पहले से ही वो शुरू हुआ है, तो उस अपेक्षा से वहां भी कहेंगे वो संयम लब्धि है। कहते शंकाकार पूछता है, एक ही चारित्र के औपशमादिक तीन भाव कैसे हो सकते हैं? तीनों भाव कैसे घटित किए? एक ही चारित्र तो एक ही है। उसका समाधान, जिस प्रकार एक चित्र पतंग अर्थात बहुवर्ण पक्षी, अनेक रंगों में जो पक्षी है उसकी बात है, बहुवर्ण पक्षी के बहुत से वर्ण देखे जाते हैं, उसी प्रकार एक ही चारित्र नाना भावों से युक्त हो सकता है। ये च का चा करना, चारित्र। देखिए, तोता कौन से रंग का होता है? हाँ, ग्रीन, हरा। और भी कोई कलर देखा है? हाँ, लाल भी देखा है, पीला भी देखा है। हाँ, मल्टी कलर। तो ये बहुवर्ण पक्षी है ना, है तो सारे तोते परंतु अलग अलग कलर्स में आते हैं, बहुत से वर्ण देखे जाते हैं, उसी प्रकार ये चारित्र भी अलग अलग भाव वहां भी हो सकता है चारित्र में। अब ये तो सामयिक छेदोपस्थापना की बात हो गई, अब यह है परिहार विशुद्धि की बात करेंगे। परिहार शुद्धि संजदो, संजदा संजदो नाम कदम भवदी। जीव परिहार शुद्धि संयत और संयता संयत किस कारण से होता है? यहां भी नय और निक्षेपों का आश्रय लेकर पूर्ववत चालना करनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में उन्होंने 7 नय, 4 निक्षेप आदि और भाव सारे लगाए थे। वो हर समय वो समझकर ये प्रश्न पूछा है ऐसे समझना। इसका उत्तर खो व समीयाए लद्धिये। अब यहाँ परिहार विशुद्धि वाला भी लिया और संयमा संयम वाला भी लिया, क्योंकि दोनों में एकमात्र क्षोभशम लब्धि होती है, इसलिए उसको लिया। परिहार विशुद्धि कौन से गुण स्थान में मालूम है आपको? नहीं, हाँ, छठे और सातवें में होते हैं, श्रेणी वालों में वो नहीं पाई जाती, इसलिए औपशमिक और क्षायिक लब्धि का नाम नहीं लिया, क्षोभशम लब्धि का ही नाम लिया। यहाँ लिखा है ना खो व समीयाए लद्धिये, अनेक क्षायोपशमिक लब्धि से जीव परिहार शुद्धि संयत व संयता संयत होता है। ये दोनों में ही क्षोभशम भाव घटित होता है, इसलिए दोनों को एक साथ एक सूत्र में बता दिया। चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के अनंत गुणी हानि द्वारा, यानी अनंत गुणाहीन हो जाना, क्षय को प्राप्त होकर देशघाती रूप से उपशांत हुए स्पर्धकों के उदय से, ये अनंत गुणाहीन होना ही उसका क्षय कहलाता है। और परमाणु तो जीव प्रदेशों में है तो निकलेंगे तो सही, तो देशघाती रूप से उदय में आएंगे, है बंधे थे तो सर्वघाती रूप से, परंतु अनंत गुणाहीन होकर अभी उदय में आ रहे हैं, सर्वघाती रूप होकर उदय में आएंगे। तो देशघाती रूप से वो रहते, सत्ता में भी अभी देशघाती रूप से रह रहे, क्योंकि सत्ता में पड़े पड़े ही उनका अनुभाग जो है, फल देने की शक्ति है, वो अनंत गुणा घट गई है, अनंत में भाग रह गई है, उसी को उपशांत भी कहा। और उदय भी है वो देशघाती रूप से है, तो देशघाती रूप से उपशांत हुए स्पर्धकों के उदय से परिहार शुद्धि संयम की उत्पत्ति होती है, इसलिए क्षायोपशमिक लब्धि से परिहार शुद्धि संयम होता है। चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के क्षोभशम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयमा संयम की उत्पत्ति होती है, इसीलिए क्षोभशम लब्धि से संयमा संयम होता है। वहां भी ऐसे ही संयमा संयम पर भी ऐसे ही घटित करना है। शंका, छठे सातवें में संज्वलन का बंध है। हाँ हाँ हाँ, जैसा अभी उदय है वैसे ही उसका बंद होगा। उनका प्रश्न ऐसे है, छठे सातवें गुणस्थान में संज्वलन का जो बंद हो रहा है वो सर्वघाती रूप से होगा कि देशघाती रूप से होगा? हमने देखा था जब हमने ये उपशम की और श्रेणी की बात की थी, पांचवें गुणस्थान से ही उसमें देशघातीकरण प्रारंभ हुआ था, पांचवें गुणस्थान से ही इन कषायों में देशघातीपना चालू हो गया था, इसका बंध भी उस रूप से ही होगा। देखो शंकाकार पूछता है, चार संज्वलन और नौ नौ कषाय, इन 13 प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों का उदय तो संयम की प्राप्ति में निमित्त होता है, वह संयमासंयम का निमित्त पने को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये प्रश्न है। उसका उत्तर नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन चार संज्वलनादिक के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया हो, प्रतिहत हुआ है ना, नष्ट हुआ, उस उदय में संयमासंयम को छोड़ संयम उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। क्या कहते हैं, पांचवें गुणस्थान में संयमासंयम पाया जाता है, तो पांचवें गुणस्थान में उदय कौन से प्रकृतियों का चल रहा है? प्रत्याख्यानावरण का उदय है और संज्वलन का भी उदय। तो प्रत्याख्यानावरण का उदय है यानी वो संयम बिल्कुल नहीं होने देता। तो यहां क्या कहते हो कि संज्वलन के जो देशघाती स्पर्धक है उनका उदय प्रतिहत हुआ, देशघाती का उदय नहीं हो रहा है उनका, प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। तो इसलिए वहां संयम नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि संज्वलन के देशघाती का उदय वहां नहीं होने दे रहा है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। तो संयम उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। अब अगला सूत्र, सुहम सांप्राय शुद्धि संजदो जदाखाद विहार शुद्धि संजदो नाम कदम भवती। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत, वो श बराबर नहीं आया, शुद्धि संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत। देखो सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो संयम है वो सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुणस्थान में होता है, और जो यथाख्यात संयम है वो कहाँ होता है? 11, 12, 13, 14। तो वो कैसे होता है, कौन किस कारण से होता है, ऐसा प्रश्न है, किस कारण से होता है। यह सूत्र सुगम है, प्रश्न समझने में आसान है। अब उसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। वह समीयाए खैयाए लब्धि, औपशमिक और क्षायिक लब्धि से जीव सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत होता है। जैसे 8वें 9वें पर भी घटित किया था, ये तो सूक्ष्म सांप्राय वाला संयम एकमात्र 10वें गुणस्थान में ही होता है। तो 10वां गुणस्थान या तो उपशम श्रेणी वाले को होगा या क्षपक श्रेणी के हो, तो वहाँ औपशमिक या क्षायिक भाव घटित होगा। और यथाख्यात भी 11वें वाले को तो औपशमिक कहेंगे, 12वें 13वें और 14वें वाले को क्षायिक लब्धि कहेंगे वहाँ। यतः यानी जिस कारण, ये पढ़ा ना, औपशमिक और क्षायिक लब्धि से जीव सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत होता है। यतः उपशामक और क्षपक दोनों प्रकार के सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थानों में, ये दोनों अलग अलग है ना, उपशम श्रेणी वाला 10वां गुणस्थान और क्षपक श्रेणी वाला 10वां गुणस्थान, उनमें सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम की प्राप्ति होती है। इसीलिए औपशमिक व क्षायिक लब्धि से सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम होता है। अब मेरा प्रश्न है, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता, चढ़ेगा तो उसको ये कौन सा होगा? हाँ, औपशमिक लब्धि होगी, क्योंकि उसने चारित्र संबंधी तो उपशम किया है, भले वो सम्यक तो की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि है, परंतु अभी चारित्र होने की उपशम करते करते वो चढ़ेगा 11वें गुणस्थान तक, तो उसके ये औपशमिक लब्धि होगी। और उपशांत कषाय, क्षीण कषाय आदि गुणस्थानों में यथाख्यात विहार शुद्धि संयम की प्राप्ति होने से औपशमिक व क्षायिक लब्धि से यथाख्यात विहार शुद्धि संयम होता है। ग्यारहवें में औपशमिक से होगा, बारहवें तेरहवें चौदहवें में क्षायिक से होगा। अब कहते असंजदो नाम कदम भवदी, ये अपनी बात आ गई। जीव असंयत किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। अब ये क्यों होता है वो बताएंगे। संयम घादिनम कम्माणम उदयेन, संयम के घाती कर्मों के उदय से जीव असंयत होता है। क्या है? संयम को घात करने वाले कर्म, इसको कहा संयम के घाती कर्म। शंका, एक अप्रत्याख्यानावरण का उदय ही असंयम का हेतु है, क्योंकि वह संयमासंयम के प्रतिषेध द्वारा समस्त संयम का घाती है। अतः संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत होता है, ऐसा कहना कैसे घटित होता है? तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय कहो तो चौथे तक, फिर असंयम घटित होता है, तो यहाँ ऐसी बात क्यों कही? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अन्य भी चारित्रावरण कर्मों के उदय के बिना, चारित्रावरण क्या कहते हैं, अन्य भी चारित्रावरण कर्मों के उदय के बिना अकेले अप्रत्याख्यानावरण में देश संयम को घात करने की सामर्थ्य नहीं होती। अन्य भी चारित्रावरण यानी कौन कौन से है? चौथे गुणस्थान में तो तीनों ही है ना, चारित्र अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन सभी है वहां पर, और जो मिथ्या दृष्टि है वो तो इसको अनंतानुबंधी भी है उसके। और अकेला अप्रत्याख्यानावरण का उदय हो और अगले वाले दो का नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। शंका, संयम जीव का स्वभाव है, इसलिए वह अन्य के द्वारा विनष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका विनाश होने पर जीव द्रव्य के विनाश का भी प्रसंग प्राप्त होता है। जैसे ज्ञान में घटित करते हैं, वैसे भी ये संयम में घटित करना चाहता है। शंकाकार संयम के बारे में भी वही रूल लगाना चाहते हैं। उसका समय, नहीं आएगा, यानी विनाश का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार उपयोग जीव का लक्षण माना गया है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग उपयोगो लक्षणम, सभी शास्त्रों में गाया है उसको। तो चढ़ाला में क्या लिखा है, चेतन को है उपयोग रूप। तो ये उपयोग जीव का लक्षण है, उस प्रकार संयम जीव का लक्षण नहीं होता। संयम को अगर जीव का लक्षण कहेंगे तो क्या होगा, कौन सा दोष आएगा? लक्षण अगर हम कहेंगे, संयम जीव का लक्षण है ऐसा कहेंगे, तो उसको कौन सा दोष कहें? दोषों के नाम हमने शाम को देखे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। हाँ, अव्याप्ति, क्योंकि यदि संयम ही जीव का लक्षण है तो ये असंयम वालों को क्या कहेंगे, जीव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो शंकाकार पूछता है लक्षण किसे कहते हैं, ये लक्षण की परिभाषा दे रहे हैं यहाँ। जिसके अभाव में लक्षण का लक्षण बराबर है, जिसके अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाता है वही उस द्रव्य का लक्षण है। क्या बात है। ये सच्चा लक्षण कैसे कि द्रव्य तो पहचाना जा सकता है, परंतु वो यदि लक्षण न हो तो वो द्रव्य भी नहीं रहेगा। यहाँ जहाँ उपयोग नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, वहां जीव भी नहीं है, परंतु संयम के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए संयम लक्षण नहीं हो सकता। जैसे पुद्गल का लक्षण रूप रस गंध और स्पर्श है और जीव का लक्षण उपयोग है। देखो ये तो न्याय है जैनिज्म का, जैन शास्त्रों का। ये लक्षण का भी लक्षण पहले कहेंगे और वो भी सच्चा लक्षण नहीं होगा, ये दोष विशिष्ट होगे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, तो वो लक्षणाभास है कहेंगे, लक्षण भी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ नहीं कहा दिया कि ज्ञान है वो जीव का लक्षण है, तो जिसके बिना जीव भी नहीं होगा। यहाँ यदि अगर इसमें ज्ञान नहीं है तो ये जीव भी नहीं है। क्या ले? अतएव संयम के अभाव में जीव द्रव्य का अभाव नहीं होता, क्योंकि वह लक्षण नहीं है। अब ये तो संयम मार्गणा हो गई, अब दर्शन मार्गणा की बात करेंगे। अभी तक कौन कौन सी मार्गणा देखी हमने? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान और संयम, आठ हो गई, 14 है ना मार्गणा। अब ये नौवीं दंशन मार्गणा। दंशनाणु वादेन चक्षु दंशनी अचक्षु दंशनी ओही दंशनी नाम कदम भवदी। दर्शन मार्गणानुसार जीव चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी व अवधि दर्शनी किस कारण से होता है, क्या हम कह सकते हैं? उत्तर तो बाद में पढ़ेंगे। कौन सा भाव घटित करेंगे, कैसे होता है, कौन सा भाव घटित करेंगे? हाँ बोलो ना, उसमें इतने दर क्यों? शव श्रमिक है ना, ये सारे देश गाती है ना, शव श्रम भाव घटित करेंगे। यदि केवल दर्शन ही अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? शायद। देखो दर्शन मार्गणानुसार जीव चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी अवधि दर्शनी किस कारण से होता है, यहाँ पर पहले के समान निक्षेप करना चाहिए। वो सारे जो द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य भाव वो सारे घटित करना। फिर शंका, दर्शन नहीं है क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। ये कहते दर्शन कोई है ही नहीं अस्तित्व में चीज, क्योंकि उसका कोई विषय ही नहीं है। बाह्य पदार्थों संबंधी सामान्य को ग्रहण करना दर्शन नहीं है, ये अभी शंका उठा रहे कि क्योंकि वैसा मानने पर केवल दर्शन के अभाव का प्रसंग आता है। अब केवल दर्शन का अभाव किस कारण होता है, उसको भी अपने जो मत है वो लिख रहा है। उसका कारण यह है, जब केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप, क्या कहते हैं, त्रिकाल गोचर यानी तीनों काल की समस्त पर्यायों को जानते हैं ना, द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को जानते हैं। तो पर्याय कैसी कैसी हो सकती है, एक द्रव्य में अर्थ पर्याय भी होती है और व्यंजन पर्याय भी होती है। तो अर्थ पर्याय प्रत्येक समय की जो सूक्ष्म पर्याय उसको अर्थ पर्याय, और व्यंजन पर्याय किसको कहना, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त जो पर्याय है अन्य गुणों के उसको कहेंगे अर्थ पर्याय। तो तीनों काल संबंधी अर्थ और व्यंजन पर्याय को जानता है कौन, केवल ज्ञान। देखो केवल ज्ञान के द्वारा जब त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यों को जान ले, जाने पर चाहिए, सोने पर क्यों है, लेने पर, ऊपर लिखा ना, केवल नानी त्रिकाल गोयनंत व्यंजन पर्याय सर्वेशु सवदव्येषु अवगयेषु, हाँ, जान लेने पर, सो निकाल देना। यानी उसने समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को जान लिया, तो केवल दर्शन के लिए कोई विषय ही नहीं रहता, ऐसी शंकाकार की शंका है। और केवल ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ को ही केवल दर्शन ग्रहण करता है ऐसा नहीं है, उसी को फिर इसने ग्रहण किया, क्योंकि अब ये सारी शंकाकार की मतों की बात चल रही। ग्रहण किए गए पदार्थ के पुनः ग्रहण करने का कोई फल नहीं है, ज्ञान ने जान ही लिया है, अब दर्शन क्या करेगा, ऐसा उसका कहना है। और समस्त विशेष मात्र को ग्रहण करने वाला ही केवल ज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थों का सामान्य धर्म केवल दर्शन का विषय हो जाए, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, सर्व पदार्थों के यानी पदार्थों में वो सामान्य विशेष बातें कर दी, कोई एक पदार्थ है उसका सामान्य उसी के विशेष है, तो ज्ञान को तो विशेषों को जान लिया और दर्शन ने सामान्य को जान लिया, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कहता है शंकाकार। क्योंकि संसार अवस्था में जब आवरण के वश से, यानी वहाँ ज्ञानावरण है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण है, उसके निमित्त से ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति क्रमशः होती है, एक साथ दोनों उपयोग नहीं है। दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, उपयोग क्रमशः होता है। तब द्रव्य के ज्ञान होने का अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा। क्या कहते हैं, वहां भी वो दर्शन है ही नहीं, इस बात को पकड़ के लिया है ना उसने। तो वहां कहते हैं ज्ञान का उपयोग और फिर पहले दर्शन का उपयोग फिर ज्ञान का उपयोग, तो कहते हैं ज्ञान के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान द्रव्य का परिच्छेदक नहीं रहा, कारण कि सामान्य से भिन्न विशेषों में उसका व्यापार होता है। कहते हैं ज्ञान द्रव्य को नहीं जानता है, क्यों, उसने सामान्य को छोड़ दिया, अकेले विशेषों को ही जानता है, इसलिए वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहा, ऐसा उसका कहना है। ये सारे एक भ्रम है ना, तो ये सारी भ्रामक कल्पनाएं चल रही इसकी। परिच्छेदक यानी जानने जानने वाला, ज्ञायक, परिच्छित्य यानी ज्ञान या ज्ञप्ति कहते हैं, परिच्छेद यानी ज्ञान, परिच्छेदक यानी ज्ञायक, और दर्शन भी द्रव्य का परिच्छेदक नहीं है, दर्शन को भी परिच्छेदक यानी जानने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि उसका व्यापार भिन्न सामान्य में, दो बार इसका व्यापार होता है, क्योंकि उसका व्यापार भिन्न सामान्य में होता है, या उसका भिन्न सामान्य में व्यापार होता है, ऐसा दो बार व्यापार होता है लिया है उन्होंने। उसका व्यापार भिन्न सामान्य में होता है, इस प्रकार न केवल संसार अवस्था में ही द्रव्य के ग्रहण का अभाव होता है, किंतु केवली के भी द्रव्य का ग्रहण नहीं होते, क्योंकि एकांत रूपी दुरंत पथ में स्थित सामान्य व विशेष में प्रवृत्त हुए केवल दर्शन और केवल ज्ञान का द्रव्य मात्र में व्यापार मानने में विरोध आता है। उसने एक एक पदार्थ के ही सामान्य विशेष कर दिए, और सामान्य को वो ग्रहण करे वो दर्शन और विशेष, ऐसा कुछ घोटाला कर दिया है। हमने भी पहला दर्शन का स्वरूप कैसे किया, ये सभी पदार्थों में कोई डिफरेंस किए बिना वो वाला सामान्य उसको लिया था। अब ये शंका करके शंका ही चल रही है अभी। और न एकांत से सामान्य और विशेष पृथक पृथक से होते हैं, जिससे कि वे क्रमशः केवल दर्शन और केवल ज्ञान के विषय हो सके। वो तो एक साथ होते हैं सामान्य विशेष, तो ये पृथक पृथक विषय हो भी नहीं सकते, ऐसा कहना है उसका। और जो है ही नहीं उसको भी यदि प्रमेय रूप से मानना अभिष्ट हो, तो गधे का सिंह भी प्रमेय स्वीकार करना चाहिए। ये मूल में क्या पकड़ के बैठा है, दर्शन है ही नहीं है, तो जो है ही नहीं उसको अगर मानेंगे तो गधे के सिंह का भी अस्तित्व होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि अभाव की अपेक्षा दोनों में कोई विशेषता नहीं है। जैसे गधे के सिंह का भी अभाव है, वैसे दर्शन का भी अभाव, ऐसे इसका कहना है। प्रमेय के न रहने पर प्रमाण भी नहीं रहता, प्रमेय ही नहीं रहेगा तो प्रमेय ने ज्ञेय और प्रमाण ने ज्ञान, क्योंकि प्रमाण प्रमेय निमित्तक होता है, प्रमेय के निमित्त से ये प्रमाण होता है, प्रमेय निमित्तक होता है, इसलिए दर्शन की ही नहीं है यह सिद्ध हुआ। दर्शन ही नहीं है, वो की शब्द नहीं चाहिए, दर्शन ही नहीं है यह सिद्ध हुआ। अब इसका ये इतनी लंबी चौड़ी जो शंका है उसका समाधान करते हैं। अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। दर्शन है, पहले दर्शन है कह दिया, क्योंकि सूत्र में आठ कर्मों का निर्देश किया गया है। अभी यहाँ कर्म की बात चल रही है तो कर्म के आधार से ही उस संबंधी सूत्र से ही यहाँ बात चलेगी। आठ कर्म है, कौन कौन से? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है। तो दर्शनावरण क्यों हुए? जिसको आवरण करना है वो पदार्थ ही वहां दर्शन नाम का नहीं होगा, तो ये फिजूल हो गया ना, आवरण बेकार गया। कर्मों के द्वारा उस जीव के गुण की सिद्धि कर रहे यहाँ। आवरण कर्म है तो वहां जैसे अभव्य में केवल ज्ञान की शक्ति है कि नहीं है? हाँ शक्ति है, क्यों? क्योंकि उसके भी वो सारे पांचों ही ज्ञानावरण है, ख्याल है? यदि उसमें थी ही नहीं, द्रव्य में अगर वो शक्ति नहीं होती है, द्रव्य का स्वभाव उसका है कि नहीं वे ज्ञान वाला, परंतु वो व्यक्त होने रूप उसकी पर्यायगत जो शक्ति पड़ी है द्रव्य में, उस रूप पर्याय में परिणमित होने की द्रव्य की शक्ति वो नहीं है उसके, परंतु उसके वही केवल ज्ञान का स्वभाव नहीं है ऐसा कहेंगे, तो फिर वो केवल ज्ञानावरण का क्या काम कर रहा है? उसका तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान रूप परिणमित होने वाला नहीं था कभी। तो यहाँ क्या कहते, आवरण कर्म है ना, देख आठ कर्म है, उसका नाम भी बताया है, और आवरणीय के अभाव में आवारक हो नहीं सकता। क्या कहते हैं? जिसको आवरण करना है वो आवरणीय, जैसे ज्ञान वो आवरणीय है और ज्ञानावरण वो आवारक है, आवरण करने वाला। देखो कर्मों के द्वारा भी जीव के भावों की सिद्धि हो रही नहीं है, तो आवरणीय के अभाव में आवारक हो नहीं सकता, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। दर्शनावरण का निर्देश उपचार से किया गया है यह भी नहीं कह सकते। कोई कहेगा अरे ये तो उपचार है, वहां कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्य वस्तु के अभाव में उपचार की उपपत्ति नहीं बनती। क्या बात है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता कहते हैं। मुख्य वस्तु जो है, हम कहते हैं ना, ये तो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन जो है वो नहीं होगा, तो वो राग भाव जो है देवगुरु प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति जो भक्ति है, उस पर उपचार होगा? ये उसको भी उपचार से सम्यक तो कहेंगे, जिसको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। किसको? राग भाव को। परंतु वो मुख्य नहीं होगा तो ये उपचार भी नहीं होगा। तो मुख्य वस्तु के अभाव में उपचार की उपपत्ति यानी उत्पत्ति नहीं बन सकती, और आवरणीय, आवरणीय यानी जिसको आवरण करना है वो, यानी यहाँ दर्शन की बात चल रही है, आवरणीय नहीं है सो बात भी नहीं है, क्योंकि चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी और अवधि दर्शनी क्षावश्रमिक लब्धि से तथा केवल दर्शनी क्षायिक करना हो, क्षायिक लब्धि से होते हैं। इस प्रकार आवरणीय के अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाले जिन भगवान के वचन देखे जाते हैं, चक्षु दर्शनी जीव है ऐसा कहेंगे ना, और वो क्षावश्रम लब्धि से होते, केवल दर्शनी है जीव वो क्षायिक लब्धि से होते, ये सूत्र में कहा है, और आगम यही प्रमाण है। जिनेंद्र भगवान का वचन प्रमाण है, उसके लिए अन्य कोई सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन ही देखे जाते हैं, तथा अब ये गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है समय सार की। एओ मे ससदो अपाणान लंसन लखनो शेषा मे बाहिरा भावा सव्वे संयोग लखणा। क्या कहते हैं? नियम सर की है। हाँ एगो में सासु दो, एगो आता है वहां, एगो है ना, एको में ज्ञान और दर्शन रूप लक्षण वाला मेरा आत्मा ही। एक और क्या लिखा है, एक और शाश्वत है। क्या कहते हैं वहां तो लिखा ना, ज्ञान और दर्शन रूप लक्षण वाला मेरा आत्मा, दर्शन आत्मा का लक्षण है, ये तो सिद्ध हो गया, भगवान की वाणी में भी आया है और ये गाथा में भी प्रस्तुत किया है कुनकुंदाचार्य की गाथा में। तो ज्ञान और दर्शन रूप लक्षण वाला मेरा आत्मा ही एक और शाश्वत है, शेष समस्त संयोग रूप लक्षण वाले पदार्थ मुझसे बाह्य है, अन्य सारे भाव जो है संयोग लक्षण वाले वे मेरे से बाह्य है। अब 17 नंबर, अशरीरा जीव गणा वजुत्ता दंसने यणानेय सायारमणायारम लक्षणमेयम तु सिद्धानम। जो अशरीर अर्थात काय रहित है, शुद्ध जीव प्रदेशों से घनीभूत है, ये धनीभूत के घनीभूत जीव घना घनीभूत है, दर्शन और ज्ञान में अनाकार व साकार उपयोग से उपयुक्त है, वे सिद्ध है। दर्शन है उसको अनाकार उपयोगी कहा है और ज्ञान को साकार उपयोगी कहते हैं, जैसे उसी को सविकल्प भी कहते हैं। ये बात आई थी ना सविकल्प निर्विकल्प की अपनी, भले वो केवल ज्ञान भी क्यों नहीं हो, उसको साकार लक्षण वाला कहेंगे। ज्ञान की विशेषता क्या है या ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान भले जीव का लक्षण हो परंतु ज्ञान का लक्षण क्या है? हाँ, तो स्वपर को जानता है, उसकी शक्ति है, परंतु कैसे जानता है? भेदों को जानता है, यानी भिन्न भिन्न भी जानता है और अभिन्न एक रूप से भी जानता है, तो सभी विशेषताओं को जानता है, तो उसको कहते हैं साकार उपयोग वाला। और दर्शन ये कोई ऐसा भेद नहीं करता, बस ग्रहण मात्र करता है, तो उसको कहेंगे दर्शन। पहले हमने वो गाथा भी पढ़ी थी ना, स्व और पर, दर्शन भी स्व पर दोनों का ग्रहण करता है और ज्ञान भी स्व पर दोनों का ग्रहण करता है। तो यहाँ जीव के लक्षण दर्शन है ये बात सिद्ध करनी थी, उसके लिए आचार्यों ने ये दो ही गाथाएं उद्धृत की है। इस प्रकार अनेक उपसंहार सूत्रों के देखने से भी यही सिद्ध होता है कि यह दर्शन है, दर्शन का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। अन्य सूत्रों के द्वारा, गाथाओं के द्वारा, आगम के द्वारा ये बात सिद्ध होती है। ऐसा ही है, छद्मस्थों के दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। खाली दर्शन और ज्ञान शब्द नहीं लेना, उपयोग लगाना, क्योंकि उपयोग में क्रम है। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा जब दर्शन कार्य कर रहा है तो ज्ञान थोड़ी नींद लेता होगा ना, आराम करेगा थोड़ा, परंतु ज्ञान की पर्याय भी हर समय चल रही है, गुण है तो पर्याय हर समय चलेगी, परंतु यहाँ उपयोग की बात चल रही है, उपयोग में क्रम है। शंका, आगम प्रमाण से दर्शन का अस्तित्व भले ही हो किंतु युक्ति से तो दर्शन का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, नहीं, क्योंकि युक्तियों से आगम बाधित नहीं होता, आगम कहते ही उसको है कि जिसमें पूर्वापर भी कोई ऐसा विरोध नहीं आता है, जो किसी से भी बाधित नहीं होता है, उसी को तो आगम कहेंगे। शंका, क्योंकि आगम से तो जात्य अर्थात उत्तम युक्ति बाधी नहीं जाती। समाधान, यह बात सत्य है कि आगम से उत्तम युक्ति नहीं बाधी जाती, पर किंतु यह युक्ति बाधी जाती है क्योंकि उसमें उत्तमता नहीं पाई जाती। क्या कहते हैं? आगम तो युक्ति से बाधित होता ही नहीं है, परंतु जो उत्कृष्ट युक्ति होगी, सही होगी, आगम के द्वारा वो उत्तम युक्ति भी बाधित नहीं होती है, तो उस युक्ति तो सिद्ध ही होती है। परंतु यहाँ कहते हैं आप जो युक्ति दे रहे हैं, आप जो दलील दे रहे हैं, जो तर्क कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उत्तम नहीं है, इसलिए वो बाधित होती है। यथा ज्ञान द्वारा केवल विशेष का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होने से जात्यंतर स्वरूप द्रव्य उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं? यदि कहेंगे ज्ञान मात्र विशेष का ही ग्रहण करता है, सामान्य को नहीं जानता, तो ज्ञान तो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य को नहीं जानता, ऐसा सिद्ध होगा। ये द्रव्य के ही अंदर विशेष को ग्रहण करता है, सामान्य को ग्रहण नहीं करता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है तो सामान्य विशेष दोनों का ही ग्रहण करेगा, उसी को तो ज्ञान कहेंगे हम, और अलग अलग नयों से भी उसका अलग अलग ग्रहण करेगा। सामान्य को ग्रहण करने वाला नय है, विशेषों को ग्रहण करने वाला नय, दोनों को एक साथ ग्रहण करने वाला प्रमाण है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि अकेले विशेषों को जानता है। यानी यदि ऐसा मानेंगे तो जात्यंतर अन्य जाति का ही कोई द्रव्य मिलेगा आपको, उपलब्ध होगा नहीं उसको, ऐसा प्रसंग आएगा। और दोनों नयों के विषय को नहीं ग्रहण करने वाले ज्ञान का साकारपना नहीं बनता। ये दोनों ही नहीं, सामान्य से और विशेष से भी यदि ज्ञान नहीं जानेगा तो वो दोनों नयों के द्वारा नहीं जान रहा है। नए तो एट ए टाइम एक को विषय करेगा, ऐसे तो ज्ञान में शक्ति है, एक को मुख्य करके जानता नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मुख्य करता है तो उसमें दूसरे नए का ज्ञान विद्यमान है, तभी तो नए द्वारा एक को हमने मुख्य किया। मुख्य कहना किसको है? दूसरे को गौण किया तभी तो गौण किया तो जानने वाला गौण करेगा को नहीं जानने वाला? जो जानता ही नहीं है तो उसको तो एक मुख्य ही मुख्य है, उसको तो कोई गौण है ही नहीं ना। तो नए तो उसी के होते हैं, जो निरपेक्ष है उसको नए भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं दोनों नयों के विषय को नहीं ग्रहण करने वाले ज्ञान का साकारपना नहीं बनता, फिर उस ज्ञान को हम साकार भी नहीं कह सकते। साकार तभी कहा था सबको ग्रहण करेगा। सामान्य और विशेष ये भी द्रव्य के भेद किए हमने समझने के लिए, तो दोनों भेदों को अगर ग्रहण नहीं करेगा, ये अकेले विशेषों को ग्रहण करता है वो ज्ञान, ऐसा नहीं है। जब विशेष कहे तो भेदों को, कौन से भेद? सामान्य और विशेष ये भी भेद ही किए हमने द्रव्य में, तो दोनों ही भेदों को ये ग्रहण करेगा तभी उसको हम ज्ञान कहेंगे। क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है, ये जो 18 नंबर के ऊपर जो गाथा दिखी है, विधिर्विषक्त प्रतिषेध रूप प्रमाणमत्रान्यतरं प्रधानं गुणोपरो मुख्य नियाम हेतु नयस्सदृष्टांत समर्थनस्ते। विधिर्विषक्त प्रतिषेध रूप, क्या कहते हैं इसका अर्थ देखते हैं। हे श्रेयांश जिन, ओ आपके मत में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन स्वचतुष्टय की अपेक्षा किए जाने वाले विधान का स्वरूप परचतुष्टय की अपेक्षा से होने वाले प्रतिषेध से संबद्ध पाया जाता है। संबंध चाहिए, क्या कहते हैं? विधि विषक्त प्रतिषेध रूप प्रमाणम अत्र अन्यतरत प्रधानम गुणों परो मुख्य नियाम हेतुर नय सदृष्टांत समर्थनस्ते। ये जो स्वचतुष्ट है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसी भी वस्तु का अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, उसको उस द्रव्य का स्वचतुष्ट कहते हैं। तो उसकी अपेक्षा से जो विधान, जो कथन करेंगे, उस विधान का स्वरूप परचतुष्टय की अपेक्षा से होने वाला प्रतिषेध, उसका निषेध कैसे कर सकते हैं? परचतुष्टय की अपेक्षा, अस्थि नास्ति करेंगे? स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि है, परचतुष्टय की अपेक्षा उसी की नास्ति है। ये विधि और प्रतिषेध, अस्थि और उसका निषेध यानी नास्ति, तो ये दोनों ही आपस में रिलेटेड है ना, उनका संबंध पाया जाता है। ये संबंध चाहिए, संबद्ध। या ऐसा है, ये जो विधान है उसका प्रतिषेध से संबद्ध पाया जाता है, यानी दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। विधि और प्रतिषेध, इन दोनों में से एक प्रधान होता है, वही प्रमाण है, और दूसरा गौण है। जब विधि और प्रतिषेध करते हैं, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय, एक को मुख्य करेंगे तो दूसरों को गौण करेंगे, गौण करके उसको प्रतिषेध करेंगे, जिसको मुख्य किया है उसको प्रधान करेंगे। इनमें जो प्रधानता का नियामक है वही नय है, जिसको प्रधान किया है उसको जानने वाला वह नय है, ऐसा हम कहेंगे। तो सामान्य को मुख्य किया, मुख्य ने प्रधान किया, तो सामान्य का ग्रहण करने वाला वो नय, ऐसा हम कहेंगे। विशेष को मुख्य किया, पर्यायार्थिक नय हम कहेंगे उसको, द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक है। कोई भी भेद किए बिना पूर्ण अखंड वस्तु को ग्रहण किया तो हम कहेंगे वो अभेद नय, यानी शुद्ध नय। और भेदों को ग्रहण करने वाले वो भेद नय में चले जाएंगे, अशुद्ध नय में चले जाएंगे। तो ये जो दोनों ये नीचे है ना, प्रधानता का नियामक है वही नय है, यानी नय ये डिसाइड करेगा कि किसको प्रधान करना है, क्योंकि उस नय का वह विषय है। एक द्रव्य में ये अनंत धर्म है, अनंत गुण है, परंतु किसको मुख्य करना, वो कि कौन से नय से हमको देखना है, उसको मुख्य करके हम देखेंगे। हमारे पास बहुत से सोने के गहने हैं, तो उनको डिजाइन रूप से, गहने रूप से देखना है या सोना के रूप में देखना है। हम ऐसा पूछेंगे आपके पास कितना सोना है, तो हम उसके ग्राम या जो कुछ है आपके पास किलो में है तो किलो में हम गिनेंगे उसका, उसका वजन बताएंगे, इतना हमारे पास सोना है। और आपके पास क्या क्या गहने हैं, तो उसको हम कंगन है, हार है, जो कुछ है, तो उसकी अपेक्षा से तो मुख्य किसको कहना, प्रधान किसको कहना, वो नए पर निर्भर है। जो दृष्टांत का अर्थात धर्म विशेष का समर्थन करता है। इस प्रकार आगम और युक्ति से दर्शन का अस्तित्व सिद्ध होने पर, ये मूल बात चल रही, दर्शन का अस्तित्व है कि नहीं है, तो आगम से भी सिद्ध होता है और युक्ति से भी सिद्ध होता है, उसका अभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि दर्शन का व्यापार बाह्य पदार्थों को छोड़ अंतरंग वस्तु में होता है। यहां यह नहीं कह सकते कि केवल ज्ञान ही दो शक्तियों से संयुक्त होने के कारण बहिरंग और अंतरंग दोनों वस्तुओं का परिच्छेदक है, क्योंकि ज्ञान स्वयं एक पर्याय है और पर्याय में दूसरी पर्याय होती नहीं। यदि पर्याय में भी और पर्याय मानी जाए तो अवस्थान का कोई कारण न होने से अनवस्था दोष उत्पन्न होता है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं होती, इसलिए अंतरंग उपयोग से बहिरंग उपयोग को पृथकभूत ही होना चाहिए, अन्यथा सर्वज्ञत्व की उपपत्ति नहीं बनती। अतएव आत्मा को अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग ऐसी दो शक्तियों से युक्त मानना अभिष्ट सिद्ध होता है। यानी इन्होंने उपयोग के ऐसे दो भेद किए, अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग। दर्शन का व्यापार बाह्य पदार्थों को छोड़ अंतरंग वस्तु में होता है, ये न्याय दीपिका वगैरह में भी ऐसे अंतरंग का, जैसे हमने ये क्या देखा, आपको समझ में आया, ये पेंसिल है समझ में आया, तो हमने कहा कि मैंने जाना, मैंने समझा, तो हम खाली पेंसिल को ही समझते हैं कि मैंने, किसने समझा इसको भी समझते हैं। तो वहां दर्शन को इसको लिया, अपने को पकड़कर मैंने ये वस्तु जानी, तो अकेले गेय को नहीं जाना, ये मैंने यह जानी, ऐसे मैं को भी पकड़ लिया, तो इसको वहां दर्शन कहा है। परंतु इसके बारे में भी पहले हमने इसके बारे में पहले पढ़ा भी था, परंतु वहां आत्मा, इन्हें अकेले आत्मा का उपयोग ऐसा भी नहीं लेना है। वहां आत्मा या सामान्य किसको कहना, ये इतनी सारी चीजें हैं, इसमें कुछ डिफरेंशिएट किए बिना सामान्य से ग्रहण करना, उसी को आत्मा कहा था। ये जो कथन में जो कुछ घोटाले हैं ना, इसका कुनकुंदाचार्य ने कड़ी शब्दों में ऐसा निषेध किया था कि ऐसा नहीं समझना कि दर्शन स्व को ही ग्रहण करता है और ज्ञान पर को ही ग्रहण करता है। दर्शन भी स्व पर दोनों का ग्रहण करता है और ज्ञान भी, ऐसी गाथाएं है कुनकुंदाचार्य। हाँ, नियम सारम हमने यहाँ पढ़ते थे ना, वहां उसमें आई है। परंतु यहाँ इस तरह से कथन आता है, परंतु वो दोनों का डिफरेंस बताने के लिए आता है। ये स्वामी जी के प्रवचन में भी पहले आया था कि धौलाई में ऐसा आता है, परंतु ये ज्ञान और दर्शन इन दोनों में कुछ विशेष डिफरेंस करने के लिए ये बात आती है। अब ऐसा मानने पर कहते हैं, 100 पेज पर आए ना, ऐसा मानने पर ये जो है ना पदार्थों के विशेष किए बिना जानना, उस ग्रहण करना, उसको दर्शन करते हैं, उसकी गाथा भी यहाँ दी है जो पहले हमने धवला में ही पढ़ी हुई थी। ऐसा मानने पर ये जो कहा है उससे विरोध भी नहीं आता, ये बात बताने जाने वाले तो ये गाथा पहले पढ़ेंगे। जमसामन्न गहनम भावाणम नेव कट आयारम अविशेषिदुणत्थे दंशनमिदि भन्नदे समये। समय ने समय में यानी आगम में क्या कहते हैं, वस्तुओं का आकार न करके वो पदार्थों में विशेषता न करके, ये कौन सा पदार्थ है ऐसे उसमें कोई डिफरेंशिएट किए बिना, क्योंकि ये पेंसिल है या रबर है कैसे कौन समझेगा, तो ज्ञान इसको निर्णय करेगा, ज्ञान जानेगा। दर्शन क्या करेगा, बस सामान्य ग्रहण उसके सत्ता मात्र का उसको अवलोकन है, वो कौन सी वस्तु है, कैसी है, उसकी क्या विशेषता है, ये दर्शन नहीं जानेगा। जानेगा कहते तो ज्ञान आता है ना। तो कहते हैं वस्तुओं का आकार न करके, आकार करने वाले को साकार कहते हैं, वो ज्ञान हो गया, और ये दर्शन तो अनाकार होता है। वो पदार्थों में विशेषता न करके जो सामान्य का ग्रहण किया जाता है उसे ही शास्त्र में दर्शन कहा है। ये जो परिभाषा शास्त्र की दी है, इस सूत्र से प्रस्तुत व्याख्यान विरुद्ध भी नहीं पड़ता। बात आई ना अभी, क्योंकि उक्त सूत्र में सामान्य शब्द का प्रयोग आत्म पदार्थ के अर्थ में किया गया है, इसी के विशेष प्रतिपादन के लिए देखो षटखंडागम जीवोत्थान सत्प्ररूपना भाग एक पृष्ठ 147 आदि। वहाँ भी वो बहुत दो तीन बार इसका अलग अलग अपेक्षाओं में उसका वर्णन आया था। जीव का सामान्यपना असिद्ध भी नहीं है, ये जीव ने उनमें कुछ डिफरेंट नहीं किया है, तो जीव को ही यहाँ सामान्य कहा है और उस सामान्य का ग्रहण ऐसा कहा, क्योंकि नियम के बिना ज्ञान के विषयभूत किए गए त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्यायों से संचित बहिरंग और अंतरंग पदार्थों का जीव में सामान्यपना मानने में कोई विरोध नहीं आता। ये बहिरंग और अंतरंग पदार्थ दोनों का सामान्य जीव में माना दिया। अभी क्या है, ये अपने बुद्धि में ये इसकी सूक्ष्मता पकड़ में नहीं आ रही है, हाँ कन्फ्यूजन ज्यादा हो रहा है ना। हाँ ये कहते हैं अभी केवल ज्ञान होने पर वो दर्शन और ज्ञान का डिफरेंस जान लो। क्योंकि जो जो चीजें जानने में आती है वो ज्ञान ही हो जाता है, तो दर्शन को कैसे पकड़ना। ज्ञान तो चल ही रहा है ना, उपयोग की बात है, उपयोग की बात चल रही है। उपयोग क्षोभशम जो है वो क्रम से होता है, और केवल ज्ञानियों और केवल दर्शनियों का उपयोग एट अ टाइम है, दोनों के एट अ टाइम चलता है। वो उपयोग रूप की बात चल रही है, वहां तो सारा उपयोग रूप ही है। शायिक जो ज्ञान है वो उपयोग रूप ही है, और हमारा कैसा उपयोग और लब्ध दोनों चलते हैं।
देखो हमारी बार बार यही भूल हो रही है, हम ज्ञान गुण और दर्शन गुण इनमें विचार कर रहे हैं। यहाँ तो उपयोग के भेद बताए हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। वो हमारे दिमाग में सेट हो जावे तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ख्याल में है? क्योंकि उपयोग के ही दो भेद बताए, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ये उपयोग जीव का लक्षण बता रहे हैं, और उसकी अपेक्षा से हम ये पढ़ेंगे तो फिर बात ख्याल में आने में भले देरी लगेगी लेकिन आएगी।
केवल ज्ञान, यहाँ तो ऐसा ही कहना चाहते हैं, अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग दोनों उपयोग एक साथ है, ऐसा वहाँ कहते हैं। इनका कथन ऐसा है, देखो शंकाकार फिर पूछ रहा है, इस प्रकार सामान्य से दर्शन की सिद्धि और केवल दर्शन की सिद्धि भले ही हो जाए, यानी दर्शन है केवल दर्शन भी है ऐसा भले ही आप कहो, किंतु उससे शेष दर्शनों की सिद्धि नहीं होती। नहीं समझे आप? आत्मा को पकड़ने वाला वो दर्शन और पर को जाने वो ज्ञान, तो भले आप ज्ञान में बोलो जितने भेद करना चाहे वो करो, तो आत्मा को ही पकड़ने वाला है, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन और ये ऐसे दर्शन जो एक ही आत्मा को ही पकड़ेगा, तो इसमें भेद कैसे हो सकते हैं? ये शंका करके शंका है, ख्याल है शंका? हाँ, क्योंकि उसके लिए वो गाथा भी प्रस्तुत कर रहे हैं, आगम की गाथाएं, तो उसमें वो चक्षु दर्शन किसको कहना, अवधि दर्शन किसको कहना, उसके लिए गाथाएं प्रस्तुत की, उसको गाथाओं को हम पढ़ेंगे। चक्षुण जंपया सदी दिस्सदि तम चक्षुदंसनम वेन्ती दिठस्य जम शरणम नायौवम तम अचक्षुति। नीचे देखा अर्थ लिखा है उसका 20 का, जो चक्षु इंद्रियों का आलंबन लेकर प्रकाशित होता है या दिखता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और जो अन्य इंद्रियों से दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। यानी चक्षु इंद्रिय का निमित्त है वह चक्षु दर्शन, और अन्य का है वह अचक्षु दर्शन। अब अवधि दर्शन के लिए गाथा बताता है, परमाणु आदि आयिम अंतिम खंडंतिमुत्तिदौ आयिम तम ओहि दंसनम पुनः जंपस्सदितानि पच्छखम। परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध तक जितने मूर्तिक द्रव्य है उन्हें, ये अंतिम स्कंध कौन सा है? परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध महास्कंध। परमाणु छोटे में छोटा लिया और सबसे बड़े में बड़ा कौन सा? महास्कंध। कितना बड़ा है महास्कंध? हाँ, लोकाकाश जितना, पूरा ही एक पूरा ही फैला हुआ एक पूरा स्कंध है, उसको महास्कंध कहते हैं। तो वहां तक के जितने मूर्तिक द्रव्य है, यानी सब मूर्तिक द्रव्य आ गए उसमें, उन्हें जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधि दर्शन है। इन सूत्र वचनों में ये शंकाकार ने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की डेफिनेशन लक्षण बता दिया गाथाओं के आधार से। इन सूत्र वचनों में बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला दर्शन कहा गया है, यहाँ तो बाह्य पदार्थों को उसने विषय किया ना, तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि तुमने इन गाथाओं का परमार्थ रूप अर्थ नहीं समझा। ये ध हुआ है, समझा हुआ है, समझा करना। तो शंकाकार पूछता है वह परमार्थ रूप अर्थ क्या है, तो कहते हैं चक्षुओं के आलंबन से जो प्रकाशित होता है अर्थात दिखता है अथवा आंख द्वारा देखा जाता है वह चक्षु दर्शन है। इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि चक्षु इंद्रिय ज्ञान से जो पूर्व ही चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्तभूत, जिसमें स्वशक्ति रूप सामान्य का अनुभव होता है, स्वशक्ति रूप सामान्य, अपने शक्ति को उपयोग में लेना, उसको स्वशक्ति रूप सामान्य का, उसका जो अनुभव होता है वह चक्षु दर्शन है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। चक्षु के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले पहले अपने स्वशक्ति रूप सामान्य का जो अवलोकन है, जो उसका ग्रहण है, उसको यहाँ दर्शन कहा, चक्षु दर्शन कहते। उस चक्षु इंद्रिय के विषय से प्रतिबद्ध अंतरंग शक्ति में चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? कहते आत्मा को जो जानना है, आत्मा को जो पकड़ता है, तो उसमें चक्षु इंद्रिय का क्या काम है? उसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि बालक जनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षुओं को जो दिखता है वही चक्षु दर्शन है, ऐसा प्ररूपण किया गया है। ये हमारे जैसे जो बालक जन हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि चक्षु के द्वारा दिखता है ये तो हमें पता है। अब उसके पहले जो कुछ ग्रहण है अपनी शक्ति का, चक्षु इंद्रिय के ज्ञान होने के पहले वाला जो स्वरूप शक्ति का ग्रहण, उसको यहाँ चक्षु दर्शन कहा। शंकाकार कहते हैं गाथा का गला ना घूंट कर उक्त गाथा का अर्थ क्यों नहीं लेते? उसका समाधान नहीं, क्योंकि वैसा करने में तो पूर्वोक्त समस्त दोषों का प्रसंग आता है। गाथा के उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है, जो उत्तरार्ध अभी हमने जो गाथा पढ़ी ना, तमोहि दंशन पूर्णम जपत्सदी ताणि पच्छक्कम, उत्तरार्ध ये पहले ऊपर जो पढ़ा था, दिट्ठस्य यजम शरणम नायवम तम अचक्षुति, जो देखा गया है अर्थात जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जाना गया है, क्योंकि कान के द्वारा देखा गया है, घ्राण के द्वारा देखा गया है, अन्य इंद्रियों के द्वारा जाना गया है, यतः उसका जो शरण अर्थात ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। चक्षु इंद्रिय को छोड़ शेष इंद्रिय ज्ञानों की उत्पत्ति से पूर्व ही अपने विषय में प्रतिबद्ध स्वशक्ति का, अचक्षु ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्तभूत जो सामान्य से संवेद या अनुभव होता है वह अचक्षु दर्शन है, ऐसा कहा गया है। यानी अचक्षु ज्ञान के पहले वाला जो अपने सामान्य का ग्रहण है उसको अचक्षु दर्शन कहा। द्वितीय गाथा का अर्थ इस प्रकार है, अभी 102 पृष्ठ पर आए हैं। परमाणु से लगाकर अंतिम स्कंध पर्यंत जितने मूर्तिक द्रव्य है, हाँ दूसरी गाथा हमने पढ़ी नहीं थी ना, मैंने सोचा हमने दोनों पढ़ ली। 100 पेज पर 21 नंबर की जो गाथा है उसको पढ़कर फिर उसका अर्थ करेंगे। परमाणु आदि आयिम अंतिम खंडंतिमुत्ति दौवाइम तम ओहि दंशनम पुनः जम्पस्सदितानि पच्छक्खम्। हमने उसका भी अर्थ पढ़ लिया था पहले। द्वितीय गाथा का अर्थ इस प्रकार है, हमने नीचे पढ़ा था उसका अर्थ, हाँ डायरेक्ट ही पढ़ा था। परमाणु से लगाकर अंतिम स्कंध पर्यंत जितने मूर्तिक द्रव्य है उन्हें जिसके द्वारा साक्षात देखता है या जानता है वह अवधि दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। ये जानता की बात है ना, परंतु उसके पहले वाला अभी बताएंगे। परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध पर्यंत जो पुद्गल द्रव्य स्थित है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्व ही जो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्तभूत स्वशक्ति विषयक उपयोग होता है, ये बार बार उन्होंने ये स्वशक्ति का ही उपयोग यहाँ लिया है। स्वशक्ति विषयक उपयोग, वही अवधि दर्शन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा ज्ञान और दर्शन में कोई भेद नहीं रहता। ज्ञान का अपना उपयोग है ना, स्वशक्ति विषय उपयोग, यानी अपनी शक्ति, अपने आत्मा की तरफ ले लेते इसको। अभी जो कुछ यथा योग्य है, अभी मैं भी इसको एक्सप्लेन अधिक करने में समर्थ नहीं हूँ। शंका, केवल ज्ञान से केवल दर्शन समान किस प्रकार है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि मेय प्रमाण, मेय ने गेय, हमने देखा ना, प्रमेय गेय मेय, मेय प्रमाण केवल ज्ञान के भेद से भिन्न आत्म विषयक उपयोग को भी तत्प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं आता। ये प्रश्न क्या पूछा ख्याल में, केवल ज्ञान तो सभी पदार्थों को जानता है, अब यहाँ कहा कि दर्शन तो आत्म विषयक उपयोग को ग्रहण करने वाला है, स्वरूप शक्ति का, तो कहते हैं तो फिर दोनों समान कैसे हो गए? केवल दर्शन तो बहुत अल्प होगा, स्व विषय को ही ग्रहण करता है, और ये तो पूरा लोकालोक को ग्रहण करता है। तो उसमें कहते हैं मेय प्रमाण यानी गेय प्रमाण केवल ज्ञान के भेद से भिन्न आत्म विषयक उपयोग को, ये उपयोग के दो भेद किए ना, एक केवल ज्ञान और केवल दर्शन, तो वो कितना है, मेय प्रमाण गेय प्रमाण है, और यह है आत्म विषयक उपयोग, उसको भी तत्प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं आता, वो भी उतने ही प्रमाण का है। अब आगे क्या था, ये तो प्रश्न पूछा था, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी अवधि दर्शनी कैसे होता है, ये प्रश्न के ऊपर ही शंका समाधान चल रहा था, क्योंकि दर्शन है ही नहीं, यहाँ से बात चली थी। अब कहते खो समियाय लब्धि यानी सार्वक्षमिक लब्धि से जीव चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी और अवधि दर्शनी होता है। अब शंका, चक्षु करना, वो चक्ष हुआ है, हाँ, चक्षु दर्शनावरण के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न होने के कारण उदय में आए हुए देशघाती स्पर्धकों के क्षयोपशमिकपना कैसे हुआ, यानी क्षयोपशम भाव कैसे घटित करते वहां पर, तो उसका समाधान कहते हैं उदय में पतन के समय में, यानी जब उदय का समय है उस समय, अभी खिर जाने का समय ना, तो पतन का समय का, पतन के समय में सर्वघाती स्पर्धकों का जो अनंत गुणहीन पना हो जाता है वही उनका क्षय है, यानी सर्वघाती स्पर्धक है उनका क्षय होना, यानी क्या है, उस रूप उदय में नहीं आना, उसका सर्वघाती में से देशघाती बनकर उदय में आना, यानी उनका अनंत गुणहीन हो जाना ही, कब, उदय के समय की बात है, पतन के समय में, उसी को उसका क्षय कहने में आता है। और देशघाती स्पर्धकों का स्वरूप से जो अवस्थान है, स्वरूप से अपने रूप से वही उपशम है देशघाती का, सरुवेण अवस्थ जम अवठान। अच्छा, यानी जब ये सर्वघाती है वो अनंत गुणाहीन होकर देशघाती हो जाते हैं, देशघाती रूप से उदय में भी आते हैं और देशघाती रूप से स्वरूप में अवस्थान भी है उनका, वही उसका उपशम कहने में आता है। क्षय और उपशम रूप इन दो गुणों से युक्त चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के स्कंधों के उदय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम का नाम क्षयोपशमिक लब्धि है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब कहते हैं अचक्षु दर्शनावरणीय देशघाती स्पर्धकों के उदय से अचक्षु दर्शन होता है। ऐसा समझकर क्षायोपशमिक लब्धि से अचक्षु दर्शन होता है ऐसा कहा गया है। अवधि दर्शनावरणीय के देशघाती स्पर्धकों के उदय से उत्पन्न हुई लब्धि से अवधि दर्शनी होता है, इसलिए क्षायोपशमिक लब्धि से अवधि दर्शन कहा गया है। ये तो तीनों में ही क्षयोपशम लब्धि या क्षयोपशम भाव घटित करते हैं। अब केवल दंशन की बात करते हैं। केवल दंशनी नाम कदम भवदी, जीव केवल दर्शनी किस कारण से होता है? तो यह सूत्र सुगम ने प्रश्न ख्याल में आवे ऐसा है तो उसका उत्तर देते हैं, खई आए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव केवल दर्शनी होता है। दर्शनावरणीय कर्म का निर्मूल विनाश क्षय है, पूर्णतः विनाश उस क्षय से करना हो, ऐसे हुआ है। उस क्षय से उत्पन्न जीव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते हैं, उससे केवल दर्शनी होता है। यहाँ यह उपयोगी गाथा है। अब यहाँ एक गाथा प्रस्तुत करते हैं। एवं सुत्तपसिद्धं भणन्ति जे केवलं न चित्ति मिच्छादिट्ठि अन्नो को तत्तो एतजियलोए। उसका अर्थ है, इस प्रकार सूत्र द्वारा प्रसिद्ध होते हुए भी जो कहते हैं कि केवल दर्शन नहीं है, उनसे बड़ा इस जीवलोक में कौन मिथ्यात्वी होगा? क्या कहते हैं, जो बातें सूत्र में कही गई है, सूत्र में किसने बताई? जो जिनेंद्र भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानकर बताई, उसी के द्वारा ये आगम में जो आई है बातें, फिर भी जो उसको नहीं मानता तो उससे बड़ा कौन सा मिथ्या दृष्टि होगा? ऐसा कहते हैं। ये तो दर्शन मार्गणा यहाँ समाप्त होती है। अब लेशा मार्गणा की बात करेंगे। लेसानुवादेन किन्न लेसियो, नील लेसियो, काऊ लेसियो, तेऊ लेसियो, पम्म लेसियो, सुक्क लेसियो नाम कदम भवदी। लेशा मार्गणानुसार जीव कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा वाला किस कारण से होता है? प्रश्न चिन्ह देना यहाँ। यहाँ पहले के समान निक्षेपों का आश्रय लेकर चालना करना चाहिए। यहाँ नो आगम भाव लेशा का अधिकार है। क्या कहते हैं, ये लेशा क्यों होती है? तो नो आगम भाव लेशा का अधिकार है का क्या? तो उसमें तो निक्षेप लगाएंगे सारे, नए भी लगाएंगे, तो उसमें नाम लेशा, स्थापना लेशा, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। भाव लेशा में भी आगम भाव लेशा और नो आगम भाव लेशा। आगम भाव लेशा यानी लेशा संबंधी शास्त्र का जानकार, उसी में उपयुक्त जो जीव है उसको आगम भाव लेशा वाला कहेंगे। और नो आगम यानी हाँ उसमें जो वो द्रव्य में लगाया था, उस भाव में भी लगाया था, परंतु यहाँ ये द्रव्य की बात मैंने लगाई नहीं। हाँ, मैंने डायरेक्ट भाव पर लिया। तो द्रव्य निक्षेप में कैसे लेंगे? द्रव्य में आगम और नो आगम द्रव्य निक्षेप अगर लगाएंगे यानी द्रव्य लेशा, आगम और नो आगम। आगम में जानने वाला जीव, वर्तमान में उपयोग नहीं है, और हाँ नो आगम में अभी उसका ज्ञायक शरीर, वो भविष्य में जानने वाला वही जीव, या तद व्यतिरिक्त यानी कर्म वगैरह जो कुछ है, हाँ उसकी बात है। वैसे यहाँ भाव में किसको लेना है? तो भाव में भी आगम और नो आगम, आगम में वर्तमान में उपयोगी वाला लेना, और नो आगम में ये बात चलेगी अभी। और उसमें अभी वो औदयिक भाव वगैरह घटित करेंगे। कर्म का उदय है ना भाव। तो यहाँ नो आगम भावलेशा का अधिकार है, उसमें नो आगम भावलेशा वाले भाव का अर्थ है वर्तमान में उसमें जो उपयोग वगैरह चलता है उसको आगम की बात की, नो आगम इन्हें शास्त्र के जानकार वाले जीव की बात नहीं है, एक्चुअली लेशा वाला जीव लेना है, इसलिए नो आगम लिया, क्योंकि कृष्ण लेशा है या हमारी जो कुछ लेशा है उसके लिए लेशा संबंधी शास्त्र जानने की बात नहीं है, सभी को है ना लेशा है, भी एकेंद्रीय जीवों को भी, हमें आपको भी सबको है लेशा, तो ऊपर के गुणस्थानों तक होगी, तेरहवें तक, तेरहवें में जो उपचार से ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में, फिर भी लेशा है वहां पर, तो वो लेशा वाला जीव यानी उस रूप परिणत जीव लिया, इसलिए नो आगम लिया, लेशा संबंधी वो जानकार होवे न होवे उसकी बात ही नहीं है इसमें, जानकार वाले जीव को भाव आगम कहा था, आगम भाव लेशा, और ये नो आगम भाव लेशा। भाव शब्द क्यों लिया, वर्तमान में उस लेशा रूप से परिणत जीव है इसलिए नो आगम भाव लेशा वाला लिया। तो हमने वो सारे कौन से नए से कौन से निक्षेप से निक्षेप बता दिया, अब कहेंगे पांच भावों में से कौन सा भाव है ये लेशा वाला, पारिणामिक भाव है क्या, नहीं, हाँ तो कौन सा होगा, क्षयोपशम तो होगा, औदयिक भाव है, क्योंकि हमने औदयिक भावों में छह लेशाओं को गिनाया था, 21 भाव हमने देखे थे ना उसमें भी लेशा का नाम आया था, तो इसमें बता दिया उन्होंने अगले सूत्र में, औदयेन भावेन औदयिक भाव से जीव कृष्ण आदि लेशा वाला होता है, आदि में सभी लेशाओं को ले लेना, कषाय संबंधी अनुभाग चाहिए ना, अनुयाय क्या है, कषायानुभाग फद्दयानम, अनुभाग करना उसको, कषाय संबंधी अनुभाग जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक पर्यंत स्थापित छह भागों में विभक्त उदय में आए हुए स्पर्धकों का प्रथम भाग मंदतम होता है। क्या कहते हैं, कषाय में जघन्य स्पर्धक यानी अनुभाग को धारण करने वाले उसको तो परमाणु को वर्ग कहेंगे, वर्गों के समूह को, समान वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे, अनेक वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे, यहाँ तो स्पर्धकों में ही बात होती है क्योंकि वो भी अनंत होते हैं, तो ये सभी स्पर्धक जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक उसके अगर हम छह भागों में विभाजित करेंगे तो सबसे वो मंद वाला है उसको शुक्ल लेशा कहें, ये शक्ति की अपेक्षा करना है उसमें, और उसके उदय से उत्पन्न कषाय शुक्ल लेशा है, ये कषायों की बात है, ये कषाय मिट जाने के बाद भी योग रहता है उसको भी उपचार से लेशा कहने में आते, उसकी बात यहाँ नहीं ली, पहले ये कषायों के जो स्पर्धक है उसमें उन्होंने विभाजन किया है। दूसरा भाग मंदतर कषाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न कषाय पद्मलेशा है। अब मंदता की तीव्रता की ओर आ रहे। तृतीय भाग मंद कषाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय तेजोलेशा है। देखो मंद कषाय को तेजोलेशा का, मंदतर पद्मलेशा, मंदतम शुक्ललेशा। चतुर्थ भाग तीव्र कषाय अनुभाग का है, अभी तीव्र की बात कर रहे हैं, तीव्र की ओर, और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय कापोतलेशा है। पांचवा भाग तीव्रतर कषाय अनुभाग का है और उसके उदय से उत्पन्न हुई कषाय का कषाय नील लेशा है, कषाय का नहीं, कषाय नील लेशा है। छठवा भाग तीव्रतम कषाय अनुभाग का है और उससे उत्पन्न कषाय है नहीं चाहिए, उसके उदय और उससे उत्पन्न कषाय का नहीं, कषाय कृष्ण लेशा है, चूंकि ये छह ही लेशाएं कषायों के उदय से होती है इसलिए वे औदयिक है। ये कषायों के उदय के कारण उत्पन्न होने के कारण इनको औदयिक कहा है। ये इसके साथ और भी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ। अश्विन।